आदाबाद खान साहब।
तस्लीम।
ओहो, अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। मैंने सुना आप कलकत्ते गए थे।
जी हाँ, राय बाबू की यहाँ कॉन्फ्रेंस थी। वो नहायत सिर हुए, हालांकि सर्दी का जमाना था।
जी हाँ,
लेकिन उन्होंने बहुत मजबूर किया, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और उसी दिन में बनारस में भी।
अच्छा, बनारस में गए थे?
हाँ, एक जलसा था।
हाँ, मगर बड़ी तारीफ सुनी है। मैंने सुना कलकत्ते के कॉन्फ्रेंस जो होती हैं वो संगीत को उद्धार के लिए होती हैं। वो सुनने वाले शायकीन और ऐसी रुचि रखते हैं संगीत के मामले में, बड़े प्रेम से सुनते हैं। आजकल तो खान साहब कॉन्फ्रेंसेस कुछ ऐसी हो गई हैं कि लोगों का विश्वास चला गया है कॉन्फ्रेंसेस से। मगर सुना कि आप बहुत अच्छा गाए वहाँ पर।
ये सब ईश्वर की कृपा है, मैं तो लायक नहीं हूँ। लेकिन कॉन्फ्रेंस बास बास जगह ऐसी होती हैं कि वो गाने का प्रचार ज्यादा हो।
जी,
ऐसा भी होता है। बाकी लोग ऐसा करते हैं कि वो एक महज शौक शो के लिए। और
जी हाँ, मगर हाँ, खैर गनीमत है, कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस का शौक है लोगों को, संगीत को उद्धार करते हैं। और अब तो हिंदुस्तान का विचार अपना यही है कि दो चार ही ऐसे गायक मौजूद हैं अपने भारतवर्ष में जो संगीत को उद्धार कर रहे हैं, और उसके शिरोमणि आप हैं। और आप सर्वविख्यात ख्यालिये हैं हिंदुस्तान के, बल्कि हर रंग को गाते हैं। तो अब लोगों ने आजकल खान साहब ये भी कुछ ख्याल कर रखा है, आप देख रहे हैं इतना प्रचार हो रहा है, कॉलेज है, स्कूल खुले हुए हैं, कि राग रागनी जो अपने शास्त्रों मानी गई, जिनको आप लोगों ने कबूला और उसको नवाजा, तरक्की दी, कि राग रागनी में लोग अपने तानबाजी, गलेबाजी इसको भर देते हैं। खान साहब, मेरा जाती ख्याल तो यह दास हूँ कि रस और भाव बड़ी चीज है, जैसा लिखा गया है शास्त्रों में।
यहाँ राग रंग जब तक कि ये ना हो, जब तक गाना बेकार है। गाना किस वास्ते? इसी वास्ते है कि मनोरंजन हो, इंसान को अच्छा मालूम हो, दिल को चैन मालूम हो।
हाँ।
कोई जमाना तो ऐसा था कि न ध्रुपद था, न होरी थी, न अस्थाई थी। पहले अनंत हरि नारायण, इसमें लोग भजन किया करते थे, ईश्वर का भजन करते थे, उसमें असर पैदा होता था, थोड़े ऐसे सच्चे लगते थे। अब तो गवैये लोगों ने मजे की तरफ सुर को तो छोड़ ही दिया है। कतई धर भर अपनी अपनी ऐसी ताने मारते हैं, सुनने वालों की तबीयत उखड़ जाती है, और जो अच्छे सुनने वाले वो तो इसको पसंद नहीं करते।
जी हाँ। और राग भी भ्रष्ट होती है खान साहब तानों से।
जी हाँ।
अब जैसे खान साहब राग दरबारी है, उसमें कोई अगर तान ही मारने लगे तो राग का स्वरूप बिगड़ जाएगा।
एक दरबारी क्या है, हर रागनी की यही तहसीत है। हमारे पंडित विशंबर सिंह जी थे, हरिया पत्तू जो।
जी हाँ,
पटियाले
पटियाले वाले। जी हाँ,
उन्होंने 24 वर्ष तक रजगा किया, इस कदर मेहनत की तान के ऊपर।
जी,
जब वो जयपुर गए तो वहाँ पंडित जी के भी पास पहुँचे।
जी,
उन्होंने गाना सुना तो बेहद तैयार थे वो।
जी हाँ,
हवा से भी कह देते कि पीछे हट जा।
जी,
बारे वो कंधे में से लेकर गई तान, हाथ से लेकर हाथ गया।
जी,
लेकिन जब गा चुके वो तो उन्होंने कहा, भाई तुमने बहुत मेहनत की है, अगर इतनी मेहनत तुम ज्यादा मेहनत ऐसी इतनी मेहनत अगर तुम करते सुर की तरफ तो कितना असर पैदा हो जाता। उन्होंने एक आईना रखा था, उन्होंने उनके सामने तो किया कि जरा ये देखो सूरत अपने।
जी,
उन्होंने सूरत देखी।
जी,
साफ मालूम हुई सूरत।
जी,
पंडित जी ने आईना हिलाना शुरू कर दिया पहले चेहरे की तरफ।
जी,
क्योंकि अब आप वो अपनी सूरत कैसी मालूम होती है उनके साहब, इसमें तो ये मालूम हो रहा कहीं से भौं कट गई, कहीं से नाक कट गई, कहीं से मुंह कट गया। कहने लगे बस यही मामला फिरक का है और दूनी का है।
जी हाँ,
ऐसा मामला है।
बहुत सही फरमाते हैं आप। अब यानी पुराने जमाने में तो हमारे यहाँ ध्रुपदी गाया जाता था खान साहब।
जी हाँ, ध्रुपदी गाते थे। और ये तो नहीं है कालचल के वक्त से, उसके बाद से ये तान की इजाद हुई।
जी हाँ,
मुगलिया खानदान में बहुत तरक्की की इसकी, और बहुत यादें हुई इस जमाने गाने की।
जी हाँ,
सुना थी ये तान भी इजाद हुई। तो तान का हद तक तान फिराना चाहिए। तान का मजा ये कि उसका सुर बराबर सच्चा रहना चाहिए, रागनी सच्ची रहनी चाहिए, और उसकी जो बातें बहुत बारीक है तक वो तान में नहीं पैदा हो सकते।
जी हाँ, वो नहीं हो
सकते। इसीलिए ध्रुपद गाते थे, उसने भरण मरण नींद सूट दहक चमक गमक ये सब बातें पैदा होती थी
और
सर में होती थी, ऐसा मालूम होता था लोगों को के दिल पर असर होता था। अब वो बात बिल्कुल उससे अलहदे ही हो गई, सब बातें प्राचीन जो थी वो अब जाती रही।
अगर इसके मायने तो ये हुए कि गाना मोहताज नहीं है शब्दों का, यानी अगर इंसान सुर ही भरे और ऐसा सच्चा सुर भरे तो सुरेश्वर है उसका श्रोता गण पर सुनने वालों पर असर होगा। शब्द का मोहताज नहीं है गाना, शब्द उसका श्रृंगार है, उसका जेवर है, उसको बढ़ा देता है। मगर जैसा आप अभी फरमा रहे थे कि अनंत हरि नारायण के अपना अलाप कबूल है, उसी से राग का प्रदर्शन हो जाता था और होता है और आप उसको करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो नाद ब्रह्म जैसा माना गया है वेदों में कि नाद ईश्वर है, नाद ब्रह्म है, तो उसी परपाटी को, उसी पद्धति को, उसी कायदे को आप लोग मानते चले आ रहे हैं। मेरा ख्याल है आपका घराने को हो गए होंगे कोई 250 बरस
ज्यादा,
कोई अकबर के जमाने से मेरा ख्याल है कि सिलसिला है,
जमाने से भी पहले से।
मेरा मैंने सुना है खान साहब कि हाजी सुजान खान साहब थे आप?
हाँ, अलकदास जी हमारे जिले बुजुर्ग थे
जी,
सब हिंदू थे। उस शाही जमाने में हर वक्त में जमाना बदलता है, उस वक्त मुसलमान हुए और ये काम चला रहा है।
जी हाँ,
ददियाल मेरी मियाँ रंगीले हैं, रमजान खान रंगीले।
जी हाँ,
और ननिहाल मेरी मियाँ हाजी सुजान खान साहब अलकदास
जी। मोहम्मद शाह रंगीले वही उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं आप?
जी हाँ,
उनकी अस्थाइयाँ हैं।
मोहम्मद शाह रंगीले दूसरे थे, ये रंगीले दूसरा। उनकी अस्थाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई
जी,
और परे परे हिंदुस्तान में बहुत लोग गाते हैं। सुना कि वो अडाने की अस्थाई है, मदरी मोरी काहे को सुन लई
जी,
औकात जीना थोड़ा।
आपने गाया था खान साहब उसको लखनऊ में, मुझे याद है।
जी हाँ,
क्या बोला खान साहब?
मदरी मोरी
याद नहीं है, मदरी मोरी
काहे को सुन लही सर, औकात जीना थोड़ा।
अच्छा खान साहब, वो अदा रंग सदा रंग ख्याल के मुजीद गुजरे हैं?
जी हाँ, उन्होंने भी बनाए ख्याल।
और मगर मैंने सुना ध्रुपदीय थे और उनके जितने बच्चे थे वो ध्रुपद गाते थे, वीण बजाई गई उनके यहाँ, मगर उन्होंने खैरियत तैयार किए और सैकड़ों उनकी स्थाई हिंदुस्तान में
बनी।
और साहब उसके बाद मैंने सुना वो शौक रंग, नीको रंग, कौड़ी रंग, पैसा रंग, मन रंग,
मन रंग और हर रंग हगिया, ये लोग भी स्थाई गाते थे। पहले तो ध्रुपद ही सब खानदानों में था
जी।
वो असल बात यह है कि चार खानदानों में गाना था
जी,
कुम्हार डागुर समझे
जी हाँ,
और इस वक्त मुझे ख्याल नहीं आता है उन्हीं की जो बुजुर्ग हमारे थे सब
जी हाँ,
तो चार बानी ध्रुपद की ध्रुपद की
हरदास स्वामी डागुर जैसे
जी हाँ।
तो खान साहब मेरा ख्याल है कि ध्रुपद का तो
हारे खंडारे नुहार डागुर
जी हाँ, जी हाँ जी हाँ,
ये चार खानदान थे। उनके बुजुर्गों से गाना शुरू से होता चला रहा है और बादशाहों ने बहुत तरक्की दी। आजकल तो हमारा चुमा अभी सरंगिया गा रहे हैं, अभी गाने ले लिया, उस जमाने सरंगिया नहीं गा सकता था, तवलिया नहीं गा सकता था।
मैंने सुना है कि आपके बुजुर्ग थे गगे खुदा बख्श साहब और उनके दोस्ती थी बहराम खान साहब से, जब कोई कभी गायक जाता था तो पूछते थे भाई तुमने कभी सीखा, अगर सीखा तो पहले बताओ, अगर नहीं बता पाता था तो मुर्गा बनाया जाता था उसको महफिल में, यानी वो अदब से बैठता था, आपके सम्मान इतना करता, सम्मान आदर की वो आपके पास नहीं बैठ सकता जब तक उसको साई याद ना हो। ये सच बात है?
ये अलीबख्श फतेह अली दूर कहाँ जाइए आप, ये अलीबख्श फतेह अली
ये पटियाले वाले,
ये पटियाले वाले, इनके वालिद कालू थे, सरंगी बजाते थे, गोपी एक कवायद थी
जी हाँ, जी हाँ
जी हाँ, उनके साथ बजाते थे, इनके गले आवाज बहुत अच्छे थे
जी हाँ,
इनकी तबीयतें बड़ी उजली थी, पंजाब में तो आवाजें अच्छी होती हैं
हाँ,
और कलर गले तैयार किए थे कि जिसकी हदली
जी हाँ।
उस जमाने जयपुर में गुनगढ़ था, रजब अली खां और बैराम खां, मुबारक अली खां और तानस खां और हमारे दादा गज्जू खुदा बख्शी मियाँ रंगीले, सब अच्छे अच्छे लोग थे। इस वक्त ही आए और एक महफिल थी, अब्बल तो उस महफिल में किसी को गाने नहीं देते थे सरंगी तबलिये को
जी हाँ, जी हाँ।
लेकिन इनको बैराम खान की जागृत थी क्योंकि गोपी भाई
जी,
ये इस वजह से इनको गवा दिया
जी,
किसी गवैये ने इनकी तारीफ नहीं।
अच्छा,
बहुत कुछ इन्होंने सिर पीटा और बहुत तारे तैयार किए और खूब मारी तारे, लेकिन किसी ने ये भी नहीं कहा भाई वाह यहाँ तक बात है। जब खान साहब तानस खान का जागृत करा दिया
जी हाँ,
और इनको बाकायदा समूरा दिया
जी हाँ,
जब इनका नाम हुआ और जब ये गाने लगे थे।
इसके माने
जी हाँ, खाली जरा गला फिराने से गाना नहीं आ जाता। वही जो अभी आप कह रहे थे
जी जी जी
के गला फिराने से गाना खाली नहीं आता।